श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 4। तत्क्षेत्रम् यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासे न मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो इससे पहले कि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा करें, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे श्रील बलदेव विद्याभूषण की गीता भूषण टीका से। तो उन शब्दों को वो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं यच्च का मतलब इस कर्म क्षेत्र के द्रव्य क्या हैं, मुख्य मुख्य द्रव्य क्या हैं, किस वस्तुओं से शरीर बना है ये बात। उसके बाद किन, ये शब्द आता है यच्च का अर्थ है। उसके बाद यह शब्द आ रहा है यादृक्ष अर्थात किन किन वस्तुओं ने इसकी शरण ली हुई है, इस शरीर में किन किन वस्तुओं का समावेश है, शरण है, इसके बारे में थोड़ा अंतर है दोनों में, इसको हम आगे समझाएंगे। उसके बाद इस शरीर में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, वो शब्द है यद विकारी, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। उसके बाद शब्द है यतश्च, यानी कि इस शरीर के प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद है यत, यत मतलब इसका स्वरूप क्या है। तो और उसके बाद जानने वाला कौन है, वो शब्द आता है स से, और च शब्द जो आया है वो है भगवान। आप देख सकते हैं यतश्च यत के बाद स शब्द है, स अर्थात जीव के बारे में और च अर्थात भगवान के बारे में, और उनके स्वरूप के बारे में शब्द आ रहा है यह, यानी स च यह, यह यो रूप में आ रहा है हमारे सामने यह। तो यो शब्द जो है, जो यह शब्द है मूलतः, वो बता रहा है कि इनका स्वरूप क्या है, यानी कि शरीर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में शब्द आया यथ। और स च यो मतलब जीव का स्वरूप क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, वो च से हो रहा है, और यह मतलब उनका स्वरूप क्या है। और उसके बाद यत प्रभाव, यानी जीव का और भगवान का इस शरीर पे क्या प्रभाव हो रहा है, तो इस चीज को समझाया जा रहा है। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझने का हम लोग प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे कि कितना समझ पाते हैं। तात्पर्य, भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र के की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र का मतलब शरीर और क्षेत्र के मतलब जीव और भगवान दोनों। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहां से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब अगर आप अद्भुत बात देखें जो मैं शब्दों को लेकर समझा रहा था, तो आप देख सकते हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका से बिल्कुल सट करके श्रील प्रभुपाद जी चल रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की शुरुआत में ही अपनी भगवद गीता को उनको समर्पित किया था। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों, अगर आपको याद हो शब्द आया था यह स च यह और यत प्रभाव, तो ये जीव भगवान उनके स्वरूप और उनके प्रभाव के बारे में चार शब्दों से इसका वर्णन हुआ था इस श्लोक की दूसरी लाइन में। तो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए, क्यों, अन्यथा हम सोचेंगे कि हम ही एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भोक्ता हैं शरीर के, और इस कारण से, इसी भावना के कारण हमारा जो जीवन है भौतिक जीवन वो रुकेगा नहीं और एक के बाद एक शरीर प्राप्त होते जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है समझना कि हम लोग इस शरीर के स्वतंत्र भोक्ता नहीं हैं और नियामक भी नहीं है, तो इस चीज को समझ लेना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, अर्थात संबंध ज्ञान हमारा भगवान से, भगवान का प्रकृति से और प्रकृति से मेरा क्या संबंध है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। और सुंदर है, क्योंकि जीव आत्मा इस जगत इस शरीर में बंध जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा प्रभाव नहीं है। भगवान इस शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्त हैं और सभी के शरीरों का नियमन कर रहे हैं। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। सक्षम पुरुष अर्थात भगवान परमात्मा, भगवान कृष्ण, और असक्षम पुरुष अर्थात जीव। जीवात्मा केवल इच्छा कर सकता है, लेकिन भगवान ही प्रकृति को नियम इंस्ट्रक्शन देते हैं, या सिग्नल देते हैं, या आज्ञा देते हैं, जिसके अनुसार प्रकृति उस कार्य को कर पाती है। कई बार मैंने उदाहरण दिया है कि इस क्लास को देने के लिए मैं कुछ सोच रहा हूं, तो कैसे सोच रहा हूं ये भी मुझे पता नहीं है, और सोचने के बाद मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या ध्वनि बाहर आ रही है ये भी मैं जानता नहीं, लेकिन ये ध्वनि बाहर आ रही है। तो इससे हम धीरे धीरे इन विचारों के द्वारा समझ लेते हैं कि हम नियामक नहीं है, करने वाले भगवान है। मैं केवल इच्छा कर सकता हूं कि मैं इस भगवद गीता पे कुछ प्रवचन दूं। तो आप ये देख सकते हैं, इस भावना से अगर हम लोग इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो मिथ्या अहंकार से अपने को स्वतंत्र कार्य करने वाला मानना, धीरे धीरे हम इस भावना से मुक्त होते चले जाएंगे। ये हमने छोटी सी इस पर चर्चा करी।